This audio is brought to you by MuslimCentral.com.
Jee, bismillah, salatu wassalam, ala rasulullah, assalamu alaikum everybody, assalamu alaikum azam. Janab, kya program hai? Main theek hoon, aap kaise hain? Kya program hai aaj ka?
Alhamdulillah. Yusuf, we have a guest today. Hum jaldi hi unko bulayenge taaki log hamari shaklein dekh ke bhag na jaye. Unhone apni PhD ki computer sciences mein LUM se, and then he did his postdoc from Virginia.
Achha.
Aur strangely, wo kuch algorithms banate for the past couple of years, he got interested in curriculum development, pedagogical practices while working at Namal College, Miyawali.
Okay.
उसके लिए फिर उनका एक नया प्रोग्राम जो पिछले तकरीबन 2 साल में डिजाइन हुआ, he was in that committee. और उसी दौरान हमारी उनसे कुछ बातचीत भी होती रही, ऑफ कोर्स. सो हम उनको आज बुलाया इस वजह से कि देयर वाज सम इश्यूज जो कि उन्होंने देखे कि हमारे पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस में, हमारे करिकुलम्स में, हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हैं. Which are related to the topics that are dear to us, you and me.
Okay.
So human growth, personality development, person relationship, जो के उसके साथ बहुत हद तक overlap करते हैं. So
we
ask them to come और हमें बताइए कि why is it important के education में, क्योंकि हमें, आपको और मुझे पता है कि हमारे मेडिकल कॉलेज जाने का सिर्फ एक एम था, और वो ये था कि हम एक ऐसे डॉक्टर बन जाएं जो मरीज को का अच्छा डायग्नोसिस करे, उसका अच्छा इलाज करे और उसे अच्छी फीस मिले. देयर वाज नो अदर पर्पस ऑफ आवर गोइंग टू मेडिकल कॉलेज. ना तो हमें घर वालों ने कुछ और बताया, ना हमारे टीचर के अलावा कुछ और बताया, ना हमने और कोई किताब पढ़ी इसके अलावा.
बिल्कुल ऐसे ही
पॉइंट एजेंडा 5 साल का था कि वो किस तरीके से आप एक बेहतर डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम अपने ज़हन में डेवलप कर ले.
बिल्कुल सही.
तो डॉक्टर जुनैद अख्तर, हम उनसे पूछेंगे कि कंप्यूटर साइंस से वो इतनी वियर्ड तरह के काम में क्यों आ गए.
और गालिबन ये कंप्यूटर साइंस से करिकुलम बरास्ता फलसफा आए हैं, कोई इस तरह का चक्कर भी है दरमियान?
ऐसा भी कुछ. जी ऐसा ही.
ये
मेरे ख्याल से आप हेडफोन उतार ही दें, पहले बेहतर थी.
चले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.
नो प्रॉब्लम.
आई एम वेरी साइक्ड. Very psyched about Psych Batak.
We're on it.
So, क्या हो रहा होता है इधर?
So, Dr. Junaid, इधर जो कुछ हो रहा होता है वो तो हम आपको अपनी पुरानी एपिसोड्स हम शेयर कर देंगे इंशाल्लाह. हम आपके बारे में थोड़ा सा ये जरूर पूछना चाहेंगे कि you did a PhD in CS, then you did a postdoc. और फिर आप अच्छे खासे अब सीएस पढ़ाते पढ़ाते ऐसा क्या हुआ? पहले तो वो प्रेसिपिटेटिंग इवेंट्स क्या थे कि आपको यू गॉट इंटरेस्टेड इन करिकुलम डेवलपमेंट और पेडागॉजी, जो कुछ आपने वहां पे किया उसकी तरफ हम बाद में आएंगे. पहले वो एक्सपीरियंसेस क्या थे कि जिनकी वजह से आपको इस तरफ आना पड़ा?
हाँ, इट वॉज अ लॉन्ग एंड वाइंडिंग रोड. ऐसा नहीं था कि वन फाइन डे आई वोक अप तो मैंने कहा ये भी काम करना ज़रूरी होता. बट बिफोर आई जॉइन नमल तो PhD प्रोग्राम मैंने अपना शुरू कर दिया हुआ था एक ख़ास डायरेक्शन में. व्हेन आई चांस्ड अपॉन अ सर्टेन इंडिविजुअल, डॉक्टर बासित कौशल उनका नाम है, तो जस्ट वो आउट ऑफ द ब्लू था. मतलब मैंने सोशल साइंसेस का कभी कोई कोर्स नहीं लिया हुआ था, तो लम्स में मैं PhD कर रहा था. तो एक अजीब किस्म का, तो हर दफा हर सेमेस्टर से पहले वो कोर्स लिस्ट फ्लोट होती थी. तो लम्स में ये कि आप ऑडिट कर सकते हैं आउटसाइड योर डोमेन कोई भी कोर्स जाके, और वैसे भी पीएचडी स्टूडेंट्स को किसने रोकना होता है, यू नो कहीं भी जा सकते हैं कभी भी. तो वो कोर्स हैड नथिंग टू डू विद जो मैं पीएचडी में कर रहा था या कंप्यूटर साइंस में. लेकिन वो मेरा एक पर्सनल कोई इशू था. कंपैरेटिव रिलीजन्स का कोर्स था जिसमें मोनोथिस्टिक जो तीन बड़े अध्ययन है उसके ऊपर था. एंड आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट के वो टीचर कौन है. मैं यानी उस डिपार्टमेंट में कभी भी नहीं आई हैड स्टेप्ड इन. सो वो बिल्कुल एक ब्लाइंड चांस मैंने लिया, पता नहीं क्यों लिया, लेकिन आई गॉट हुक्ड ऑन. यानी कि वो फिर एक कोर्स लिया. वो कोर्स बाय द वे बासित कौशल साहब ने उसके बाद नहीं कभी ऑफर किया. लेकिन उसके बाद वेबर पर इकबाल, तो फिर वो हर सेमेस्टर कोई ना कोई कोर्स मैं लेता रहा, बाद में रजिस्टर करा के भी. आई थिंक दूसरे कोर्स के एंड तक डॉक्टर बासित कौशल को मैंने एक दिन कहा कि मैं तो जो भी अंडरग्रेड से कंप्यूटर साइंस कर रहा था, फिर मास्टर्स में भी कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन में, फिर पीएचडी भी स्टार्ट हो चुकी हुई थी इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एंड हियर आई वाज एब्सोल्युटली हुक्ड ऑन टू हिज वर्ल्ड यू कुड से, जिसका कंप्यूटर साइंस से कोई ताल्लुक नहीं था बज़ाहिर. अब आई मतलब मैं उनको जितनी भी दुआएं दूं कम है, बिकॉज उनकी एडवाइस ये थी मेरी सिचुएशन सुनने के बाद कि देखें जुनेद, ईंट उठाए ना नीचे से कंप्यूटर साइंटिस्ट निकल आता है. इसी तरह आप ईंट उठाएं दूसरी तो नीचे से फिलॉसफी का बंदा या सोशल साइंस का बंदा निकल आएगा. लेकिन ऐसे बंदे बहुत कम हैं जो हु कैन स्टेप इनटू बोथ वाटर्स, जो इंटीग्रेट कर सके कंप्यूटर साइंस और फिलॉसफी को मीनिंगफुली. वो बात आप यकीन करें ऐसे मतलब दिल में कुछ बातें होती हैं, दिल में स्ट्रेट वे पेनिट्रेट कर जाती हैं, मतलब यहाँ हार्ड बर्न हो जाता है आपके मेमोरी में कोई चीज़ हमेशा हमेशा के लिए. तो वो चीज़ मेरे साथ वो इंस्टेंस हुआ एंड इट मेड एब्सोल्यूट सेंस टू मी एट दैट टाइम एंड अप टिल टुडे. आई थिंक दैट वाज द बेस्ट एडवाइस दैट आई एवर रिसीव्ड इन माय लाइफ. तो फिर वही मैंने किया पीएचडी में. फिर चार्ल्स सैंडर्स पर्स एक अमेरिकन फिलोसोफर है, तो उनका फलसफा और कंप्यूटर साइंस में एक एवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स, एक खास किस्म की क्लास ऑफ एल्गोरिदम्स है, उनको मैंने मेरी मीनिंगफुली इंटीग्रेट किया. तो वहां से कहानी शुरू हुई. यानी तो अलोंग द वे रियलाइज हुआ कि जो डिग्री थी मेरी वो इट वॉज ऑलवेज अ पीएचडी, लेकिन माशरा कुछ डायमेंशंस में इवॉल्व करता है, प्रोग्रेस करता है ना, तो कुछ डायमेंशंस में गिरावट भी आ जाती है. पीएचडी स्टैंड्स फॉर डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी या डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, लेकिन उसका फिलॉसफी से कोई ताल्लुक नहीं रहा हुआ, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज कि आप किस चीज़ की डिग्री दे रहे हैं और उसके नाम के पीछे इस लाइक मतलब फ्रॉड भी ऐसे ही होता ना, जो आप चीज़ बेच रहे हैं तो पीछे वो सामान ना निकले, तो ये फ्रॉड एक्चुअली यही होता है. तो उसके बाद फिर पोस्ट डॉक में प्रोफेसर पीटर ओक्स के साथ कुछ टाइम गुजारा. तो वो भी
बिफोर यू प्रोसीड, इफ आई मे आस्क, आपका ये जो इंटीग्रेशन वाला एफर्ट था, हाउ वाज दैट रिसीव्ड बाय द पीपल ऑफ योर फील्ड? Like it's something you know not very common. So how common, did they take that?
Unique tha. It was a bit of a mixed bag. Yani ke kuch log bahut absolutely fascinate ho jate the. Kuch log of course kehte hain ki ye kya, matlab iski kya zarurat hai. Kyunki ab silos mein duniya hai na, academia bhi. So computer science doesn't need any other, even science, philosophy to dur ki baat hai. किसी और साइंस की भी क्या ज़रूरत है. तो उस तरह के लोग भी बेशुमार हैं कंप्यूटर साइंस में, मतलब थ्रू आउट दी हायरार्की, ऊपर से लेके नीचे तक, स्टूडेंट से लेके फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेशन. तो हर तरह के लोग हर जगह हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कंप्लीटली फैसिनेट भी होते हैं. तो उसके बाद कुछ इस पे मास्टर्स एमफिल के स्टूडेंट्स ने आगे भी काम किया है इस डायरेक्शन में, लेकिन मेरे लिए इतना ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं रखती डेमोक्रेटिकली स्पीकिंग, यानी कितने परसेंट ऑफ लोग इससे इम्प्रेस हो रहे हैं कि नहीं, इट मेक सेंस टू मी। तो आज तक मैं इसी तरह के काम करता हूँ कंप्यूटर साइंस को, अशद ज़रूरत है, कुछ बहसें पहले हो चुकी हैं 200 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले, 2000 साल पहले भी, तो वो वाली यानी वाई री इन्वेंट द व्हील। कंप्यूटर साइंस के लोग अगर ये समझे कि बस ये पहली दफ़ा जैसा नेचुरल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग है, तो लैंग्वेज पे काम वेस्टर्न लिंग्विस्टिक्स और बहुत मतलब हजारों साल से हुआ हुआ है, तो वही पैसे अब हम कंप्यूटर साइंस वाले लोग आपस में करना शुरू हो जाएं, इमेजिनिंग कि ये पहली दफ़ा दुनिया में किसी ने ये वाली चीज़ें सोची हैं, तो वो बेवकूफ़ी सी होगी ना। तो बहरहाल मूविंग ऑन, पीटर रॉक साहब ने इसी तरह एक दिन सवाल किया मेरे से कि जुनेद क्या यू थिंक आपकी जितनी भी साइंस है या आपके नज़दीक एक साइंटिस्ट, उसकी सारी साइंस और उसकी सारी एक्टिविटी लैब के अंदर महदूद है, या कि ऐसा भी हो सकता है कि यू हैव टू स्टेप आउटसाइड योर लैब एंड यू मतलब फॉर द सेक ऑफ योर साइंस, आप साइंस में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं लेकिन लैब के आउटसाइड भी कोई एक्टिविटीज आपको हो सकता है करनी पड़ रही हो, तो क्या क्या आपके पैराडाइम में कैन यू इमेजिन अ साइंटिस्ट डूइंग दिस, या आपके मुताबिक साइंटिस्ट वो है बस जो लैब के अंदर कन्फाइंड हो? तो इस पे फिर ऑफ कोर्स फिर कॉन्वर्सेशंस हुई लंबी चौड़ी, एंड आई कंप्लीटली अग्री नाउ, आई एम ऑफ द ओपिनियन के वो साइंटिस्ट नहीं है जो एक डब्बे के अंदर महदूद है, यानी कि एक साइंटिस्ट को हो सकता है कुछ पॉलिटिक्स भी करनी पड़ रही हो, कोई पॉलिसी लेवल तक भी कोई काम करना पड़ रहा हो इन ऑर्डर टू डू गुड साइंस इन हिज लैब। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि काम तो वही करना है जो लैब के अंदर करना है, लेकिन कुछ रुकावटें हैं, कुछ किसी चीज़ की वजह से वो काम, वो साइंस का काम लैब के अंदर अच्छा नहीं हो सक रहा, यू माइट हैव टू स्टेप आउटसाइड ऑफ द वॉल्स ऑफ द लैब। ये मैं इन द कॉन्टेक्स्ट कर रहा हूँ ऑफ योर अर्लियर क्वेश्चन, या आपने इंट्रोडक्शन में जो काम दिया था, व्हाई डिड आई हैव टू स्टेप आउटसाइड ऑफ माई ओन फील्ड, और फिर एज एन एजुकेशनिस्ट करिकुलम के ऊपर या इवन फैकल्टी पॉलिसी के ऊपर हम लोगों ने काम किया, तो वो एग्जैक्टली इसलिए ताकि जो काम मैं एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट करना चाह रहा हूँ मीनिंगफुली, मुझे उस तरह के स्टूडेंट्स भी मिल सके, मुझे उस तरह के कलीग्स भी मिल सके नमल में, वो अच्छे लोग रिटेन रह सकें, प्रोटेक्टेड रह सकें, जो कि अच्छा काम करना चाहते हैं। वरना एक दौड़ लगी हुई है, वो HEC का एक फार्मूला है, उसमें जिसके इतने नंबर ऑफ पेपर पब्लिश हो गए तो वो जनाब एसोसिएट बन जाएगा, जिसके इतने हो गए तो वो ये बन जाएगा, तो वो उस तरह के लोग काफ़ी हैं अब अनफॉर्चुनेटली स्पीकिंग, जब से HEC ने ये स्कॉलरशिप्स देना शुरू की PhD के लिए। सो आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर के यानी कुछ वो क्या वजूहत थी जिसकी वजह से I have to step outside of the bounds of my computer science. इसको हम मज़ीद भी खोल सकते हैं।
So, Hamid भाई, आपने you went outside of your on field और आपने एक वो खास direction choose की कि आपने curriculum को develop करना है, और वो curriculum अगर हम उसको strictly बात करें तो वो computer sciences का curriculum नहीं है जो आपने डेवलप किया, जो पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस डेवलप की, जो स्टूडेंट जो टीचर इवेल्युएशन क्राइटेरियाज डेवलप किए, वो कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड के नहीं है, और इन इन सम वे अगर हम एक खास डायमेंशन से देखें तो दे एक्चुअली रिड्यूस the number of paper published per year. तो इसकी क्या वजह के एक लिहाज से कहा जा सकता है कि you are slowing down the research, और एक लिहाज से ये भी कहा जा सकता है कि आपने जो courses develop किए, एक तो आप हमें उन courses के बारे में बताएं, और ये कहा जा सकता है कि ये courses से آپ ایک وہ بندہ جو وہ 12 کورسز لے گا, اس کے علاوہ 12 سی ایس کے کورس لے کے اپنی فیلڈ میں زیادہ آگے جا سکتا ہے, تو وائی شوڈ ہی ٹیک دوز 12 کورسز؟
ہاں مطلب میں, لیکن کین آئی پوز ٹو کوسچنز ہیئر, مطلب جس کی میں مطلب اس ڈائریکشن میں ایک نیچرل آرگینک پروگریشن کے تھرو آیا ہوں. ایسا نہیں کہ میں نے ایک دن اٹھا کے ٹھیک ہے یہ بات تو ہوگی کہ سائنس کے باہر بھی جانا پڑ سکتا ہے, لیکن وہ کدھر جائے باہر نا. تو فار انسٹنس پاکستان میں ہم جس ریالٹی میں رہتے ہیں تو وی ہیو ٹو بی ویری کوگنیزنٹ آف دیٹ. تو ہم پاکستان کے معاشرے میں پل بڑھ رہے ہیں, اسی میں یونیورسٹی بھی ہے. یونیورسٹی کو فیڈ ان ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس فرام اسکول کالج کی اسٹریم, یعنی کہ میٹرک ایف ایس سی کر کے نارملی نمل میں آتے ہیں, یا او لیولز اے لیولز بھی اب آج کل سیم کہانی ہے. تو میں اپنے فرسٹ سیمسٹر کی جو فرسٹ فریشمین کلاس آتی ہے ان کے سامنے میں ایک گراف رکھتا ہوں. آپ سمجھے ایکس ایکسس پہ نا نمبر آف ایئرز ہیں, 2000 سے لے کے 2020 تک لیٹ سے ایکس ایکسس ہے. وائی ایکسس پہ اگر ہم ایوریج ایف ایس سی کے مارکس پلاٹ کر دیں, تو میں اسٹوڈنٹ سے یہی پوز کرتا ہوں کہ آپ کے خیال میں گراف کیسا ہوگا, ڈیکریزنگ ہوگا اوور ایئرز؟ تو کہتے ہیں نہیں سر, کیونکہ آئی تھنک آل آف اس وڈ نو کہ مارکس آر آن دا رائز. ایک انفلیشن سی آ گئی ہوئی ہے جس طرح اکنامکس میں ہے, تو وہ مارکس میں بھی انفلیشن ہے. تو یہ ایک پلاٹ ہو گیا, تو اٹس این انکریزنگ گراف, وہ سلوپ اس کی پازیٹیو ہے. اسی پلین کے اوپر ایک اور پلاٹ بھی میں سائملٹینیسلی ایک اور گراف بھی پلاٹ کرتے ہیں, پاکستان کی نمبر آف پرابلمس وہ بھی اوور دا ایئرس. ایکس ایکسس کامن ہے, وائی ایکسس پہ اب نمبر آف پرابلمس اگر پلاٹ کریں اوور دا ایئرس, وہ بھی میں پوچھتا ہوں کیا وہ ڈیکریزنگ فنکشن ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں سر. کیا وہ کانسٹنٹ ہیں کہ جتنی پرابلمس تھیں 1947 میں اتنے ہی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں. ایونچولی کنورج کرتے ہیں ہم کانورسیشنلی اسپیکنگ, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان, وہ بھی اسٹوڈنٹ سوچنے سمجھنے والے ہوتے ہیں, تو وہ کوئی ڈکٹیٹ نہیں میں کر رہا, بٹ ان کی بھی لیونگ ریئلٹی یہی ہے, یعنی میرے دماغ کا کوئی فتور نہیں ہے. پرابلمس بھی آن دا رائز ہے اور ایوریج ایف ایس سی کے مارکس بھی آن دا رائز ہے. تو پھر میں ان سے سوال کرتا ہوں, اف دا مارکس ور ٹو بی این انڈیکیٹر, یعنی کہ ایک سائن ہوتا کہ پاکستان ہونہار اسٹوڈنٹس پروڈیوس کر رہا ہے, رائٹ, تو پھر نمبر آف پرابلمس کا گراف کیسے ہو جانا چاہیے تھا؟ تو وہ انورس ریلیشن شپ ہونا چاہیے تھا نیچرلی اسپیکنگ, کیونکہ ایسے ہونہار لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو مسائل کا حل کر سکتے ہیں نا. تعلیم کا کسی بھی باشعور یا سیلف ریسپیکٹنگ نیشن کا ایک بہت بڑا فنکشن ہوتا ہے تعلیمی نظام کا, اور وہ ہوتا ہے کہ ایسی سٹیزنری پروڈیوس کرنی ہے جو ہماری ہی قوم کو آنے والے فیوچر کے مسائل کو حل کر سکیں گے یا ایڈریس کر سکیں گے نا, وہ والے لوگ فیوچر کے پروڈیوس کرنے ہیں. بات فیوچر کی ہوتی ہے لیکن بٹ ہیئر وی آر, ہم وہ لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں جو نمبر تو زبردست لے رہے ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اٹس اے فیکٹ, لیکن پرابلمس کے ساتھ انگیج نہیں ہو پا رہے, پرابلمس مزید کمپلیکس اور گمبھیر ہوتی جا رہی ہیں. سو سم تھنگ مسٹ بی امس, کوئی چیز, سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ, یعنی کہ جس طرح سے چل رہا ہے اسی طرح چلنے دیا جائے پھر تو حالات مزید کمپلیکیٹ ہی ہونے ہیں نا. سو یہ ایک پول ہے, تو سارے اسٹوڈنٹس اس میں پول اس میں دے انڈرسٹینڈ دے. سو وہ پھر جو تھوڑا کروڈ ذہن رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جس طرح سالہ سسٹم خراب ہے یا کرپشن, آج کل کا نیریٹو وہ کرپشن ہے کیونکہ نیشنل لیول پہ, تو وہ کہتے ہیں کرپشن. یہ اللہ کے شکر ہے کوئی نہیں کہتا, لیکن یہ ہے کہ کچھ سوچنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں کہ جس طرح یہ بالکل سیلفش انڈیویجول کریٹ کر رہا ہے ہمارا تعلیمی نظام, نمبروں کی دوڑ کو پرائم بنا دیا, نمبرز کو وہ جیسے مرضی حاصل ہوں اس میں شارٹ کٹس جتنے بھی لینے پڑے پلس, لیکن وہ بالکل سیلفش, وہ ڈارونین جس طرح اکانومی کام کرتی ہے وہ اسی.
Assalamu alaikum. I think Dr. Junaid ki internet is
Azam,
back.
Hello?
Ji. We lost you for a bit. You're back now. Please continue.
Sorry. So, matlab, jo ek, kyunki dekhe na, ek bahut bada process hai. Koi 14 years, 12 years ki education hai. Bahut lamba process hai, right? So, wo kuch habits inculcate karega na, individual mein. So, agar to total habit ye hai, ki jis tarah ka formula kisi aur ne mere liye bina diya aur mera total function us apne aap ko behtareen fit karna hai us formula mein. Kisi aur ka banaya hua formula hai. اور میرا ٹوٹل زندگی کا مقصد ہے اور ساری ٹریننگ یہ ہے کہ کس طرح سے اس فارمولے کے اوپر اپنے آپ کو میکسیملی فٹ کر کے دکھانا ہے تو مجھے وہ نمبر میکسیمم مل جائیں گے نا. یہ لوگ پھر معاشرے میں کوئی چینج نہیں لا سکتے کیونکہ جب یہ اسکولوں سے نکلیں گے یونیورسٹیوں سے نکلیں گے تو پھر معاشرے نے بھی ایک فارمولا ان کے لیے بنایا ہوگا ایبسولوٹلی وہ ورکڈ آؤٹ فارمولا. تو کیونکہ ان کی ساری ٹریننگ یہ ہے کہ کسی اور کے بنائے ہوئے فارمولے کو بس آپٹیملی فٹ کر میں نے آئی ہیو ٹو ایڈجسٹ ٹو سم مطلب ایک ٹو این آؤٹ سائڈرز ویو. تو جو اس کو بیسٹ فٹ اپنے آپ کو کرنے کی ٹریننگ رکھتا ہے تو وہ لوگ جب کسی جاب میں جائیں گے یا مارکیٹ میں جائیں گے یا اپنا بزنس بھی شروع کریں گے تو جو سڑا ہوا فارمولا پاکستان میں یا دنیا نے بنایا ہوا ہے بس وہ فٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہوں گے اس میں. تو یہ اسٹیٹس کو زبردست کیا کہتے ہیں سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے یہ سارا نظام. ٹریننگ یہ ہونی چاہیے تھی میرے نزدیک, پڑھا لکھا آدمی وہ ہے یعنی آنیسٹلی اسپیکنگ, کہ جو اپنی کرنٹ ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے فرسٹ آف آل کہ میں کہاں رہ رہا ہوں, مطلب ہاؤ ڈز دس ہول تھنگ ورک. سیکنڈلی وہ اس سے تھوڑا تھوڑا سا ڈس سیٹسفائڈ بھی ہو کہ مطلب کچھ سم تھنگز آر ڈیفینیٹلی ناٹ رائٹ, ہے نا. تھرڈلی وہ بندہ, پڑھا لکھا بندہ وہ ہے, باشعور آدمی جو ایک بیٹر ریالٹی کو امیجن کر سکتا ہے کرنٹ ریالٹی سے not totally satisfied but thirdly ایک better reality کو envision کر سکتا ہے but fourthly کیونکہ وہ ایک better future ابھی exist نہیں کر رہا it's in the future and it's in the imagination لیکن اس کو وہ competency رکھتا ہے اور یہ lastly اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ competency رکھتا ہے اس imagined better future کو reality میں لے کے آنے کے لیے. تو یہ چار چیزیں میرے نزدیک جو جس کے تھرو کوالیفائی کرے گا ایک بندہ پڑھا لکھا جو ہے. یہ تو میں آپ کو ایک پول کی میں نے بات بتائی تھی. سیکنڈ پول میں کرتا ہوں جو میرے لاسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تھرڈ ایئر کے جو سینئر اسٹوڈنٹس میرے کورسز میں آتے ہیں. اب آپ امیجن کریں, ہیئر آر دا اسٹوڈنٹس جو پاکستان میں ویری ارلی آن ڈائیورجنٹ پاتھس ہو جاتے ہیں کہ آرٹس کے اسٹوڈنٹس ایک طرف چلے گئے ہیں, سائنس کے ایک طرف چلے گئے ہیں, رائٹ. اور اس کے بعد ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس میں وہ آتے ہیں جو پری انجینئرنگ والی ایک اور پاتھ لے چکے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد تین سال کا انڈر گریڈ میں بھی انہوں نے کمپیوٹر سائنس, اگین جس طرح پی ایچ ڈی کی ڈگری میں پی اور ایچ سٹڈ فار سم تھنگ, اسی طرح کمپیوٹر سائنس کی ڈگری میں وہ کمپیوٹر سائنٹسٹ بن رہے ہیں, رائٹ. تو میں سینئر اسٹوڈنٹس کو یہ پول کرتا ہوں اینڈ ود آؤٹ ایکسیپشن میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, جس طرح ہماری آئیڈینٹیٹیز ہے نا, تو اب یہ آپ کا سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ سوال ہے میرے نزدیک. ایک بندے کی ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں, مطلب ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہماری ایک نیشنل, مطلب ہم پاکستانی بھی ہیں, دیٹس ون شور شارٹ آئیڈینٹیٹی. ہم مسلمان بھی ہیں یا مطلب ایک ریلیجیس آئیڈینٹیٹی بھی ہوتی ہے نا ہر ایک کی. تو اسی طرح ایک وہ انسان بھی, ہم انسان بھی ہیں, مطلب آئی کین ناٹ associate, well, I associate less with dogs than with human beings, inshallah. So, well, various identities. Hain. Isi tarah, hum student hain, main teacher hoon, ye wo, right? Main unse phir ye sari identities wo maan jaate hain. Halanki humne koi teer nahi chalaye. As a Pakistani, maine koi nishan-e-haider nahi kabhi win kiya hua. Lekin, mere ye conscious, subconscious mein ye baat rehti hai ki main is pe koi confusion nahi hai, koi doubt nahi hai mere nazdeek. Although, ab گورنمنٹ اور کچھ لوگ مانگ رہے ہیں پروف کہ آپ پاکستانیت کا پروف دیں, بہرحال اسی طرح ایز اے مسلم میں نے کوئی खास काम नहीं किया हुआ, लेकिन मुझे ये आइडेंटिटी एटलीस्ट वाजे है, अलाइव है. कभी कभी वो फोरफ्रंट पे आ जाती है, कभी पीछे चली जाती है, बट इट्स देयर. लेकिन जब मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ, इतनी ट्रेनिंग के बाद हैव यू एवर पिक्चर्ड योरसेल्फ एज अ साइंटिस्ट, आपकी डिग्री पे है आप साइंटिस्ट बन रहे हैं, विदाउट एक्सेप्शन, एंड वो दे टेक अ फ्यू मिनट्स और उसके बाद, लेकिन देर ऑनेस्ट इनफ टू से कि नहीं, हमने कभी ये अपने आप को पिक्चर नहीं किया एज अ साइंटिस्ट. जिस तरह से हम एज अ वीक पाकिस्तानी, एज अ वीक किस्म का आइडेंटिटी एज अ मुस्लिम है, लेकिन कभी ना कभी तो वो पिक्चर किया है ना, कभी ना कभी वो सवाल बंदा को करने पड़ता है अपने आप से. तो लेकिन ये थॉट फर्स्ट टाइम उनके जहन में आई है कि आई एज अ साइंटिस्ट, ऑल्दो ये एट द एंड ऑफ, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ देयर 14, 16 years of education and training. तो हम मदरसे के स्टूडेंट्स को बुरा भला कहते हैं और उनके निज़ाम को बुरा भला कहते हैं, बट आई कैन बेट कि मदारस में पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट बाय द टाइम कि वो ग्रेजुएट होने वाला है, उसको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि वो आलम है या वो है ना, वो जिस चीज़ की डिग्री ले रहा है वो उसी की आइडेंटिटी भी रखता होगा. और ये मैं आपको, ये सिर्फ नमल के स्टूडेंट्स नहीं है, आई कैन बेट ऑन दिस, आप ये पोल कराएं. तो ये वो फ्रॉड है. तो
हमारे तो कंप्यूटर साइंस में तो फिर वर्ड साइंटिस्ट इज स्टिल देयर एज फार एज द रेस्ट ऑफ द डिग्रीज आर कंसर्न, चाहे वो साइकोलॉजी हो चाहे वो, और द वर्ड साइंटिस्ट इज मिसिंग, दे वुड इवन बी लाइक आर वी इवन साइंटिस्ट और इज दिस इवन एन इंप्लिकेशन.
तो आई गेस अल्लाह की तरफ से मेरे लाइफ थोड़ी आसान हो गई, एक में फिलोसफी आ गया था, एक में साइंस आ गई, जो मेरी डिग्रियां हैं. बट आसम आप कुछ कहना चाह रहे
हैं? डॉक्टर जुनेद, आपने जब अभी ये सारी बात बताई और तो आपने ये बताया कि हमारा, आपने बीच में यूज किया कि हमारा एजुकेशनल जो भी हम एजुकेशन हासिल करते हैं विद दैट ट्रेनिंग, सम हैबिट्स आर इनकल्केटेड एंड अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी इज ऑल्सो फॉर्म. लेकिन एजुकेशन को तो हम लोग ये समझते हैं कि इट इज़ अ न्यूट्रल एक्टिविटी जिसमें आप, यू आर जस्ट लर्निंग समथिंग, और आपकी वो जो ओवरऑल पर्सनैलिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है. तो क्या ऐसा भी है कि आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इवन अननोइंगली, जो कि और ज़्यादा बुरी बात है, दे आर ग्रूमिंग टिपिकल टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज दैट यू जस्ट कॉल्ड एज सेल्फिश?
देखो, सेल्फिश इज वन थिंग दैट इज एक्वायर्ड. तो हैबिट्स की बात हो रही है और हैबिट्स पे लॉन्ग टर्म टेंडेंसीज होती है. तो सेल्फिशनेस इज वन थिंग. वो जिस तरह मैंने बताया था, किसी के बनाए हुए फॉर्मूले पे अपने आप को फिट करना, ये भी एक हैबिट है ना, मतलब ये जिंदगी गुजारने का और सोचने का एक लॉन्ग टर्म हैबिट बन जाता है. तो आप बस हर जगह फिट होने की बात करते हैं. इसी तरह आपने लर्निंग की बात की है, तो वो जो नंबरों को मैक्सिमाइज करने वाला जो रूट है, वो फिर रटा सिस्टम हमारा डे वन से इनकलकेट करता है. तो दैट्स अ हैबिट. तो आई डोंट सी हाउ ये एक वैल्यू न्यूट्रल किस्म का प्रोसेस है, जिस आप जो कह रहे हैं ना, ये तो न्यूट्रल किस्म का चीज़ होती है एजुकेशन. ये डेफिनेटली एक ऐसा प्रोसेस है जो कतन वैल्यू न्यूट्रल नहीं है. ये कुछ वैल्यूज इंसान की और लॉन्ग टर्म हैबिट्स दे रहा है और माशरे में छोड़ रहा है. ये वाले इंसान इवेंचुअली आपके सिटीजनरी बननी है. ये कोई ऐसा तो नहीं है कि आप बाहर जाएंगे तो वो कोई मखलूक, खलाई मखलूक बाहर फिर रही होगी. यही लोग जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों से, यही आपको हर जगह नजर आएंगे. टू द एक्सटेंट कि अब मैं पीएचडी करने के बाद, अब मेरे इर्द गिर्द सारे जो लोग हैं वो दुनिया के पढ़े लिखे तरीन लोग हैं. कोई फ्रांस से करके आया हुआ है, कोई स्कॉटलैंड, आयरलैंड, दिस दैट, पीएचडी हैं, पोस्ट डॉक, सब कुछ, और साइंस की डोमेन में. तो मैं आपको सिर्फ एक अगेन वर्ड और उनके मीनिंग में जो रब्त डी जनरेशन के स्टेज पे चला गया हुआ है, आई ऑलवेज इमेजिनड के साइंस के अंदर वो लोग हैं हु लव एक्सपेरिमेंट्स. मतलब एक्सपेरिमेंट के अलावा तो उनका कोई दिमाग में और कोई फ्रेमवर्क भी नहीं होगा. मतलब दे वुड think of everything in terms of experiment, right? मतलब कि there's hardly anything outside of it. तो मुझे किसी वजह से, क्योंकि आप किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं तो कुछ सर्विसेज भी देनी पड़ती हैं, एंड एन इदारा सच एज नमल जो रिमोट एरिया में है, तो वहाँ पे फैकल्टी के लिए एक स्कूल भी बना फैकल्टी के बच्चों के लिए, बिकॉज हम सारे अपनी फैमिलीज को लेके आए हुए हैं. और इसका जो बिगर पिक्चर है वो नॉलेज सिटी की है, विच मीन्स इट्स नॉट जस्ट अ यूनिवर्सिटी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सारा कुछ होगा. तो उसमें अब बहुत सारे लोकल एरिया के बच्चे भी आते हैं, एंड सम ऑफ देम आर वेरी वंडरफुल, मतलब फार बेटर देन जो फैकल्टी के पढ़े लिखे लोगों के बच्चे. तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू हेड द स्कूल फॉर ईयर और सो, जिसमें कुछ बातें मुझे रिवील हुई एंड जिसकी वजह से मैं फिर इस डायरेक्शन में भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हूँ. ये जो मैंने आपको सवाल बताए ये मैंने उस दौरान सोचे कि ये मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं, सोसाइटी का फैब्रिक जो है वो खराब से खराब होता जा रहा है, तो समथिंग इज अमिस. तो कुछ कंपैरिजन करने का मौका मिला यूरोप में, या जो वही सेल्फ रिस्पेक्टिंग जो कौमें हैं वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सारी अपनी मदर टंग में करते हैं बच्चों की, और यानी कि वो मैथ्स भी करेंगे एज अ कॉम्पिटेंसी, वो अपनी मदर टंग में करेंगे, वो अपनी बाकी भी स्किल्स अपनी मदर टंग में करेंगे. सिर्फ एक कॉम्पिटेंसी है कि फॉरेन लैंग्वेज की एक कॉम्पिटेंसी है, तो वो किसी जगह इंग्लिश होगी, किसी जगह कोई और भी हो सकती है. अब जिस तरह चाइना इज टेकिंग ओवर, तो अब बहुत सारी कंट्रीज में बच्चों को इंग्लिश की बजाय चाइनीज सिखा रहे हैं एज अ फॉरेन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, एंड इट्स फाइन. लेकिन पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसमें अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा मैथ्स भी पढ़ रहा है तो वो इंग्लिश में पढ़ रहा है, राइट? वो मैथमेटिकल मॉडलिंग करना सीखना है उसने, लेकिन वो ट्रांसलेशन में ही लूज हो जाता है हमारे बच्चे. हमारे अपने बच्चों के साथ भी ये मामला होंगे जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, दे वुड नो दिस. और हम अब अपने बचपन से अपने बड़ों को गालियां देते सुनते आ रहे हैं कि जनाब तालीमी निज़ाम खराब है, तबाह है पाकिस्तान में, वो इस साला सिस्टम खराब है, लेकिन वी वर नॉट एट द रिसीविंग एंड एनी मोर. अब तो हमारे हाथ में था कि हम इसको कुछ चेंज, अपना स्कूल है फॉर गॉड सेक. ये मतलब एज अ पेरेंट्स आई नो आप लोग भी ये चाहते होंगे कि जो आपके बच्चे जिस स्कूल जाते हैं आपकी थोड़ी सी से हो उसके अंदर ना, कि क्या चीज़ पढ़ाई जाए. तो दिस वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. तो मैंने बहुत केयरफुली एक एजुकेशनिस्ट को भी ढूंढा, तो कुछ चीज़ें करने की कोशिश की जो कि विच मेड टोटल सेंस हेयर. और बात हुई थी कि अगर तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए तो फिर आप आई एम सॉरी से वो आप फिर कुछ गालियां बकने के मतलब आपको जवाब नहीं देता कि आप कुछ कर सकते थे उसका ना, यू नॉट ऑन द रिसीविंग एंड एनी मोर. तो जैसे ही मैंने कुछ चेंज करने की कोशिश की तो जितने भी ये हजरात हैं उन्होंने मुझे ये कहा, आप हमारे ये पढ़े लिखे वही पीएचडी शुदा पोस्ट डॉक शुदा, तो मैं आपको सिर्फ एक वर्ड का उनका साइकोलॉजिकल मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, तो यू विल बी सरप्राइज्ड बट आई वाज शॉक्ड. उन्होंने ये कहा कि आप हमारे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. तो ये जो एक्सपेरिमेंट का वर्ड है मुझे उसका मीनिंग वाजे हो गया कि उन्होंने पीएचडी और पोस्ट डॉक करने के बाद भी जो एक्सपेरिमेंट का मीनिंग उनके लिए नेगेटिव है, बिकॉज अदरवाइज एक पीएचडी पोस्ट डॉक इन द साइंसेज वो इस टर्म्स में एक्सपेरिमेंट का टर्म यूज नहीं कर सकता किसी के साथ कि भाई एक्सपेरिमेंट ना करें. पॉइंट समझ आ रहा है? आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस. तो ये मेरे हाँ
तजर्बा ना करें हमारे बच्चों को.
हाँ जी, हालांकि दे आर एब्सोल्युटली फाइन विद सेंडिंग देयर किड्स थ्रू अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट, यानी एक एक्सपेरिमेंट जो फेल्ड है फॉर श्योर, उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं कि वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, देर इंसिस्टिंग कि नहीं वही कराएं आप.
देयर देमसेल्व्स प्रोडक्ट्स ऑफ दैट फेल्ड एक्सपेरिमेंट.
जी जी जी, लेकिन एट अ सर्टेन स्टेज उसके बाद वो उसको गालियां निकालना शुरू हो गए ना, नहीं ये खराब है खराब है, तो कुछ करना है. तो ये भी
the fact that it is an experiment is hidden now
and that's lost on them, ki ye itself ek experiment jo ki failed hai, and for sure it's a fact now ki ye failed experiment hai, they're fine with that. Lekin koi naya cheez karne ki koshish kar raha ho उसको काम ना करने दिया जाए, ये भी एक चीज है जो एजुकेशनल निज़ाम ही शायद ये टेंडेंसी भी डालता है. बिकॉज सम ऑफ माई स्टूडेंट्स वो ये लिखते हैं अपने ये जिसकी एक्सप्लेनेशन में जो ग्राफ नहीं मैंने बताया था कि मार्क्स भी ऊपर जा रहे हैं वो भी. बट कमिंग बैक, तो मुझे यानी इस तरह के कुछ एक्सपीरियंसेस हुए जिसके बाद फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अगर मुझे अपनी जो मेरा जो साइंस की इंक्वायरी और उसकी परसूट में जो मेरे रिसर्च बेस्ड काम है या मैं जो हायर कोर्सेज पढ़ाना चाहता हूँ सीनियर स्टूडेंट्स को, तो द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आई वांट सिटिंग इन माय लैब्स इन माय रिसर्च वर्क एज अ को पार्टनर या एज माय स्टूडेंट इन माय हायर क्लासेस, वो एक खास किस्म की टेंडेंसीज उनमें होने चाहिए. मतलब वो थॉटफुल किस्म के स्टूडेंट्स होने चाहिए, वो उनका कोई हिस्टोरिकल लेंस भी डेवलप हुआ होना चाहिए, चीज़ों को देखने का एक जाविया होता है ना. तो हम जिस तरह से साइंस कराते हैं ना, कंप्यूटर साइंस की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ, बट आई थिंक इट कैन बी जनरलाइजेबल, जो मैंने वो आइडेंटिटी की बात इसलिए की थी, हम सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स किसी और के बनाए हुए फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हमेशा स्टूडेंट्स को दिखाते हैं और उनसे कहते हैं इसका रट्टा मार लो. आई डोंट नो अगर ये आपको बात समझ आ रही है कि नहीं, बट कंप्यूटर साइंस में जिस तरह डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम है, एक ग्राफ्स के अंदर सर्च करने का एक एल्गोरिथम है, वो इसका नाम इतना मुश्किल है DIJKSTRA, हम उसको प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते. इट्स समवन एल्सेस एल्गोरिथम, किसी और ने किसी और मसले के लिए, लेकिन उसका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, फिनिश्ड फॉर्म है, हम टक करके अपने स्टूडेंट्स को वो दिखा देंगे. ये देखें इस मसले का हल, ये डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम याद कर लें, फाइनल एग्जाम में यही आएगा, वो याद कर लेते हैं. लेकिन अगर वो जो मेकिंग ऑफ वाला जो चीज होती है राइट, कि वो डाइक्स्ट्रा साहब ने वो पहले दिन बैठ के तो नहीं बना लिया होगा, तो वो जो हिस्टोरिकल लेंस है, फिर इसी तरह फिलोसॉफिकल लेंस है, तो इस तरह के कुछ लेंसेज हैं विच आई वांट डेवलप्ड इन माय स्टूडेंट्स, ताकि मैं एक खास किस्म की बात करके उनको कहीं लेके जा सकूं ना. इसी तरह इन माय को पार्टनर्स, यानी मैं रिसर्च भी अकेला बंदा नहीं हर वक्त कर सकता, तो यू नीड अ टीम. तो फैकल्टी मेंबर्स भी आई वुड वांट सच इंडिविजुअल्स जो इस तरह से सोच सकते हो ना. जिस तरह अगर आपने कोई बड़ी रिसर्च करनी है तो उसमें आपको यू वुड हैव टू स्टेप आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ योर ओन डोमेन, लेकिन अगर वो आप कंफर्टेबल ही नहीं है किसी भी, और जिस तरह आप साइकोलॉजी के लोगों से बात करने में भी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी का कोई क्रॉस होता हो मीनिंगफुली किसी जगह पे, जो लाजमी चाहिए होगा ना. तो अगर हम कंप्यूटर साइंस वाले अपने ही ड्राइंग रूम में बैठ के सारे मसले हल कर लें, तो आई एम श्योर वो मसले का हल नहीं होगा. जिस तरह मैं कोई ऐप बना दूँ, आपके जो क्लाइंटेज है, आपके जो एंड यूजर्स हैं या जो आपको पेशेंट्स आते हैं, तो अब क्योंकि AI का ज़माना है और जनाब ऐप बन सकती है, तो मैं आपसे बात किए बगैर ऐप बना दूं और मैं मरीजों में भी बांट दूं और मेरी वो डाउनलोड्स हो जाए और मुझे ग्रांट मिल जाए ये वो, लेकिन वो मसले का हल करने की बजाय अ मैन हु वाज अ पेशेंट के हज़ार कॉपीज जो है वो दुनिया में या मिलियन कॉपीज चल रही हो, तो आपका काम हो सकता है, आप लोगों का काम हल होने की बजाय मजीद कॉम्प्लिकेट हो जाए. जी जी है ना. तो लेकिन वो जो फूफा और वो जो गर्दन में वो जो अपनी डिग्रीज का जो सरिया होता है वो बन रही है ऐप्स और वो जबरदस्त सेल हो रही है, पिच हो रही है, वाह वाह हो रहा है, सब सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी नेटवर्क सब हो रहा है, लेकिन मसला हल हो रहा है कि नहीं, नोबडी नोज. तो मैं यानी किसी पाथ के थ्रू इस नतीजे पे पहुंचा कि कुछ हमें स्किल्स चाहिए, कुछ हैबिट्स हैं वो भी लॉन्ग टर्म है. फॉर इंस्टेंस थॉटफुल इंडिविजुअल, इफ वी वॉन्ट के बाय द टाइम स्टूडेंट थॉटफुल क्रिएट हो रहे हो नमल से. बाय द वे नमल का फिर जो मोटो था, अगेन PhD के PH ने मुझे हल जिस तरह लाइफ थोड़ी सी आसान की, कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो इसी तरह जो इदारा मैंने ज्वाइन किया उसका मोटो ऐसा खूबसूरत था कि उसने भी मुझे हेल्प किया. उसका मोटो है शेपिंग दोज हु विल शेप द फ्यूचर. Yeah, shaping those who shape the future. It's a beautiful motto. So I believe कि वो बड़े thoughtful individuals हैं. वो फिर उनकी वो listening skills, उनकी thinking skills, उनकी speaking skills, उनका openness towards experimentation. तो हमने एक list faculty ने मिलके. तो it's not just me. By the way, ये मैं गलत impression नहीं छोड़ना चाहता कतन. I was fortunate enough to. ये एक insider joke था. So I was fortunate enough to be in conversation with the kind of individuals around me. जो school के बारे में तो अच्छा नहीं सोच सकते थे क्योंकि अपने बच्चे involved थे. लेकिन university के किसी और के बच्चे नमल college के अंदर जो आते हैं उसके लिए वो बिल्कुल जबरदस्त सोच लेते थे. अल्लाह की शुक्र है. तो हमने कुछ habits ही formulate की जिसमें thoughtfulness मैं आपको एक example दे रहा हूँ. अब ये figure out हुआ कि ऐसा तो नहीं होगा हम बटन दबाएंगे अभी तक ये नहीं हो रहा. हमने कॉन्वर्सेशन ऐसे स्टार्ट हुई थी कि क्या चीज़ मिसिंग है हमारे स्टूडेंट्स में ना, तो वो थोड़े नेगेटिव कॉनोटेशन में आता कि थॉटलेस है हमारे स्टूडेंट्स. तो खैर वो होते होते वो फिर उसको पॉजिटिव कर लेंगे, थॉटफुल होने चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम अच्छा कल से डिसाइड कर लें कल से स्टूडेंट थॉटफुल होंगे, हाँ ठीक है हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा ना. तो उसके दो प्रॉन्ग्ड इसका सोल्यूशन फिर था. एक तो ये डिसाइड मतलब ये भी कन्वर्ज हुआ आउट ऑफ कॉन्वर्सेशंस एंड आई एम ग्लैड कि टू द डिग्री फैकल्टी मेंबर्स ऑफ नमल में ये सारी एबिलिटी ये सारे कैरेक्टर्स होंगे जिसका मैं आपको अभी जिक्र किया लिस्ट में जिसमें थॉटफुलनेस इज जस्ट वन ऑफ देम. ओनली टू दैट डिग्री स्टूडेंट्स क्योंकि हमारा ही कुछ इंप्रेशन होते हैं ना, तो ओनली टू दैट डिग्री स्टूडेंट्स में वो चीज़ आ सकी. नंबर वन दिस. नंबर टू, सिंस वी बिलीव इन चेंज थ्रू एजुकेशन तो करिकुलम में फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज क्या किया जाए, क्योंकि जब तक वो कंप्यूटर साइंस के सिर्फ वो जावा का कोर्स पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स का कोर्स पढ़ रहे हैं तो वो तो एक डब्बा है. इज हार्डली एनी टेंडेंसी उसमें कि आप कोई मीनिंगफुल इंगेजमेंट स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हो. तो फिर हमने अगेन सारी यूनिवर्सिटी को कॉन्फिडेंस में लेके कोई 7-8 कोर्सेज थे जिसमें इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ फिलोसफी, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड या सिविलाइजेशनल हिस्ट्री इंक्लूडिंग के फिर इंडो पाक हिस्ट्री. लेकिन हिस्ट्री पॉइंट बीइंग के वो डेट्स नहीं याद करानी है आपने, एक हिस्टोरिकल जो लेंस है ना वो डिवेलप करना इंपॉर्टेंट है. फिर ग्रेट बुक्स आर्स एंड द वर्ल्ड यानी लिटरेचर, क्योंकि अगर आप HEC की स्कीम्स देखेंगे ना उसमें होगा टेक्निकल राइटिंग करा दें, फंक्शनल इंग्लिश करा दें, दैट्स समथिंग एल्स. हमारे अगर आप वो थॉटफुल इंडिविजुअल्स बनाना चाहते हैं या उस तरह के लोग जो फ्यूचर को शेप कर सकें तो वो आपको फिर ग्रेट लिटरेचर के टेक्स्ट में मिलेंगे. वो लोग जो सोसाइटी के साथ लड़ाई भी ले सकते हैं, वो जायंट्स, वो आपको बुक्स में मिलेंगे. अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारे इर्द गिर्द नहीं मिलेंगे ऐसे लोग के जो मार्शल से लड़ाई ले सकें, वो आपको फिलोसफी की बुक्स में मिलेंगे. जी बाहर जाके तो यू गेट द पॉइंट. इसी तरह प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस का एक कोर्स है जो कि आप समझ लें हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ साइंस है, जिसके लिए हमें वेरी काइंडली वो आसिम बख्शी साहब आप लोग जानते हैं उन्होंने अग्री कर लिया है. वो अब हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं इस वक्त प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस अगेन. यानी कि अब ये वाले कोर्सेज करके यानी इन द फर्स्ट ईयर और फर्स्ट टू ईयर्स जब ये स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस में जाएं या आप मैथ्स में जाएं या बिजनेस में जाएं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाएं, हैविंग गॉन थ्रू दिस स्ट्रीम ऑफ ह्यूमैनिटीज के बेस्ड के कोर्सेज, ये अब हमारा एक वर्किंग हाइपोथेसिस है एंड इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट कि वो कंप्यूटर साइंस भी बेहतर करेंगे. ये मेरा बिलीफ है इस वक्त, लेकिन ये वैलिडेट हो जाएगा इंशाल्लाह. मेरा तो इसमें बिलीफ है या उस तरह इनवैलिडेट भी हो जाए जिस तरह आजम का जो सवाल था, क्योंकि एट द कॉस्ट ऑफ सम कोर्स हमने अपने कोर्सेज थोड़े से थिन कर लिए जो प्रोग्राम रिलेटेड कुछ कोर्सेज हैं. लेकिन इसमें हमारा बिलीफ यही है कि अगर तो आपने कोई फ्यूचर बेहतर इन्विजन करना है तो फिर आपको इस तरह का करिकुलर चेंज करना पड़ेगा ताकि वो लोग प्रोड्यूस हो सकें जो कि किसी और के फॉर्मूले पे रटे रटाए फार्मूले पे चलने के बजाय कोई अपना फार्मूला भी कोई बेहतर फार्मूला भी घर सकने की एबिलिटी रखते हो ना. सो इस तरह का प्रोग्राम है.
Like even if we talk about the wo formula ya wo algorithms indigenous situation mein kis tarah se utilize honge without having that historical lens without having that philosophical lens even that adaptation is not possible.
Main to societal formula ki baat kar raha tha but aapne you rightly pointed out hum at the end of the day hum ek consumer nation hain. Aur when it comes to technology hamare aap dekh le aaj TikTok ban hua hai तो पता नहीं क्या रोला होगा. हम किसी और की बनाई हुई चीजों को सिर्फ एज अ कंज्यूमर यूज कर रहे हैं क्योंकि ये इसी तरह डेमोक्रेसी हमारा प्रोडक्ट नहीं है ना तो वी डोंट नो व्हाट टू डू विद इट. वो कितना एक्सप्लॉइट हो रहा है आप देख रहे हैं राइट क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट नहीं है वो हमारी सोच से नहीं पैदा हुआ वह आइडिया. तो हम किसी और के आइडिए को जब यूज भी करते हैं तो वो इतने भद्दे तरीके से करते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ करें. तो क्योंकि मैंने जो आपको साइंस वाली कहानी इसलिए बताई थी कि हम फिनिश प्रोडक्ट्स उनको सिर्फ रटवाते हैं तो हम अपना कोई ऐप भी बनाने के काबिल नहीं है बाय द वे. यानी ये लॉस हो रहा है क्योंकि किसी और की बनाई होगी हम सिर्फ यूज करेंगे. तो जो इंडिजिनस सोच है ऑर्गेनिक सोच है वो जब पैदा नहीं होगी तो फिर वो ऐप भी वो वाली नहीं बनेंगी जो किसी हमारी सोसाइटल इशू से रेलेवेंट हो. वो फिर हमारी ऐप हो विच मेक सेंस ओवर हेयर उसको फिर यूजेज भी ऑर्गेनिक और इंडिजिनस होगा ना. सो इस तरह की स्पिरिट है. लेकिन मैं बस लास्ट बात करूंगा अपनी फिर आप लोगों के क्वेश्चन में गई है जो भी मैंने आई थिंक काफ़ी टाइम ले लिया. जब ये हमने बना भी लिया ना सारा ज़बरदस्त काम हो गया वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तक ओके हो गया यानी कि नीचे से लेके ऊपर तक भी हमने अप्रूव करवा लिया. लेकिन कुछ नए फैकल्टी मेंबर्स ज्वाइन करते हैं नमल को और वो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे भी आते हैं और सीनियर भी हैं तो वो हैं एक्रेडिटर माइंडसेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वो कहते हैं ऑल ऑफ अ सडन ये एचईसी में ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का कोई कोर्स उनकी लिस्ट में मुझे नाम नहीं नज़र आ रहा राइट. इसी तरह फिलोसफी का कोर्स कंप्यूटर साइंस के उसमें नहीं है. उधर तो एक इस्लामिक स्टडीज़ है पाक स्टडीज़ है और फंक्शनल इंग्लिश है टेक्निकल राइटिंग है. ये आप क्या पढ़ा रहे हैं. तो अब अल्लाह की तरफ से चौथी जो मेहरबानी हुई है मेरी लाइफ आसान तो काफ़ी डिस्पेयर किस्म का मतलब काफ़ी ग्लूमी किस्म का माहौल हो गया था. लेकिन एचईसी ने अंडर द लीडरशिप ऑफ तारिक बनूरी साहब चेयरमैन चेंज हुए हैं आई डोंट नो आपको पता कि नहीं. रिसेंटली उन्होंने एक रीवैम्प का वर्ड यूज़ किया अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी रीवैम्प्ड 2020 उन्होंने लॉन्च कर दिया और तमाम यूनिवर्सिटीज़ को. अभी ये इतनी पब्लिक बात नहीं है बट आई थिंक जो यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको पता है. और मतलब हमारा अल्लाह ताला की तरफ से वैलिडेट हो गया वो एचईसी वाले लोग एकदम से बैठ गए. वो इस एंगल से आ रहे थे कि हम तो अपने स्टूडेंट्स की सक्सेस के लिए बहुत कंसर्न है तो वो जब जाएंगे डिग्री अटेस्ट नहीं होगी. मतलब वो इस एंगल से आ रहे थे कि वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए. और हम भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन हम तो बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात कर रहे हैं सिर्फ पहली जॉब देने की बात नहीं कर रहे. हम जरा काफ़ी लॉन्ग बड़ा कैनवस था हमारा. लेकिन वो एब्सोल्युटली वैलिडेट हुआ है एचईसी ने. हमने तो 8 कोर्सेज करे ना एचईसी ने जनाब पर सारी यूनिवर्सिटी को कह दिया कि 13 ह्यूमैनिटीज बेस्ड कोर्सेज होने चाहिए. उनके नाम भी वही हैं जो हमने रखे हुए थे. तो ये एक लास्टली मतलब ये एक ज़बरदस्त चीज़ हो गई है. तो हमारा काम अब बहुत आसान हो गया. एचईसी वाली मैंटेलिटी वाले लोग उनके पास अब कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं बचा. वो अब लगे हुए हैं कि हाँ थैंक यू सो मच आपने अच्छा करिकुलम बनाया हमारा काम यानी नमल को खास चेंज नहीं करनी पड़ेगी.
सो डॉक्टर जुनेद आपने जो शुरू में हमने बात की कि कोई भी ایجوکیشن ہو وہ کچھ خاص طریقے کی پرسنالٹیز، کچھ خاص طریقے کی ہیبٹس جو ہیں وہ انکلکیٹ کرتی ہیں، نرش کرتی ہیں. اور پھر اب آپ نے جو اینڈ میں یہ جو کریکولم کی بات کی اور جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جو پرانا کریکولم تھا، تو کیا ہم ایز سائیکیٹرسٹ، اب اگر یوسف اور میں سوچیں، تو ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ اگر ہی از ٹرینڈ ٹو بی اوپن ٹو فلاسفی، جنرل سائنس، لٹریچر، آرٹس اینڈ ادر، تو کین وی آئی تھنک وی کین امیجن کہ وہ اپنی پرسنل لائفز میں بھی ہی وڈ بی اوپن ٹو دا ایکسپیرینسز دیٹ ہی کین ناٹ ہمسیلف ویلیڈیٹ.
ہاں، یعنی کہ جس کے لیے اس کو ریچ آؤٹ کرنا ہی پڑے ٹو دی ادر، رائٹ؟ تو دیکھو نا، یہ جو چیز ایک اوپننیس کرتی ہے، اینڈ مطلب کوئی ریزن ہوگی ان کورسز کو ہیومینٹیز کے امبریلا کے انڈر پلیس کیا جاتا ہے. آفٹر آل وی آر ہیومن بینگس، مطلب اور ہیومن بینگس کوئی وہ مونولیتھک روبوٹس نہیں ہیں. وی آر سوشل اینیملس جو ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، اینڈ وی نیڈ دی ادر جسٹ ایز دی ادر نیڈس می سم ٹائمس. تو ہمیں ایک دوسرے کی ساتھ ہی زندہ رہنا اور ایک دوسرے کی ضرورت رہتی ہے موجود نا. لیکن میں اس ساری چیز کو اس نظر سے نہیں دیکھتا ایز اے کنزیومرسٹ، کیونکہ ایک وہ مطلب ایک خاص قسم کی اکنامکس دنیا میں پرمیٹ کی ہوئی ہے. تو یعنی کہ یہ کورسز اس لیے نہیں پڑھنے کہ آپ ایک زیادہ امیر کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹ بن سکے، یا پڑھ سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی کہ ایک بہتر میننگ فل فلفلنگ معاشرہ قائم کرنے کے لیے جس میں ایک ہیومن ڈگنیٹی منیملی چاہیے ہوتی ہے نا، مطلب وہ کیسا معاشرہ ہے جو صرف ایک انجینئر اور ڈاکٹر کو ہی عزت سے دیکھے گا اور باقی سب، یہ تمام ماں باپ اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں نا، یا تو انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے. لیکن ہم سب نے وہ پاکستان دیکھ لیا کہ اگر آپ اف یو گو اباؤٹ دس وے تو پھر ایونچولی ڈاکٹر اور انجینئرز کی بھی کوئی عزت نہیں رہتی، رائٹ؟ مطلب وہ بھی کسی قابل نہیں رہتے عزت کے. تو ہمیں وہ معاشرہ چاہیے جس میں ایک بس ڈرائیور بھی جو ہے وہ بھی اتنا ہی ریسپیکٹیبل ہو، اس کی جاب بھی، اس کو بھی پیسے بھی اتنے ہی مل رہے ہوں، اور وہ جو سروس پرووائڈ کر رہا ہے وہ بھی اتنی پروفیشنل ہو جتنی کہ کوئی انجینئر یا ڈاکٹر اپنی جگہ بیٹھا دے رہا ہے. تو مطلب کنیکٹنگ اٹ ٹو یور کوسچن، کہ ہمیں ڈیفینیٹلی ضرورت ہے دوسرے لوگوں کی، پروفیشنلی اسپیکنگ ایز ویل ایز ہیومینٹی کے لیول پہ. لیکن وہ جو ٹینڈنسیز ہیں نا کہ نہیں، ایک ورٹیکل ہیرارکی میں ہی رسپیکٹ کو رکھنا ہے، اور اوپر یہ والے دو تین لوگ ہوں گے، باقی سب نیچے کہیں دفن ہوں گے، تو وہ ٹینڈنسیز ہیں، وہ لانگ ٹرم ہیبٹس ہیں جو کہ میننگ فل ڈائلاگ بھی نہیں اسٹیبلش کرنے دیں گے. یعنی ایز اے کمپیوٹر سائنٹسٹ اگر میں سائیکالوجی کے لوگوں کو سمجھوں وہ یعنی بینیت میں، وہ ڈائلاگ کیا خاک ہوگا، رائٹ؟ یا وہ کسی مسئلے کے حل کے لیے ڈائلاگ نہیں ہوگا، وہ کسی جگہ مجبوری میں کوئی بات کرنی پڑ جائے تو کر لیں گے.
Do not think of psychologists beneath you. They are under your skin actually.
Oh, تیری خیر ہوئے سر، جیسے آپ کہیں گے.
Yusuf, question?
I think before moving on to questions, Dr. Junaid Islam, you mentioned کہ habits جو develop ہوتی ہیں، curriculum is loaded and this is a baggage of habits that we graduate with. It is very easy to see how these habits then manifest themselves in personal psychological problems and then interpersonal conflicts. جیسے آپ نے کہا، اگر میں ادر کو ایز اے فیلڈ، ایز اے اسپیشلسٹ ان اے فیلڈ گنجائش نہیں دیتا، تو میں کسی ادر کو کسی ریلیشن شپ میں گنجائش کیسے دوں گا؟ اور وہ پھر جو ڈائنامک وہاں پہ آئے گا، دیٹس گوئنگ ٹو، وی سی دیٹ ایوری ڈے.
آل اوور پریکٹس از اراؤنڈ 8 سال 9 سال کی بچی ہے، تو وہ شیکسپیئر، یعنی جو قومیں اس وقت اوپر ہیں کسی بھی وجہ سے، انہوں نے اپنے جو بڑے ہیں، جو جن کو وہ بڑے سمجھتے ہیں، ان کو ایکسیسیبل بنا دیے بچوں کے لیول پہ بھی. हम जिनको अपने अकाबरीन समझते हैं वो हमने ऊपर बिठा के रखने हैं, वो कभी नीचे तक एक्सेस उनकी देनी नहीं है। तो वो मैं शेक्सपियर की आप कोई भी स्टोरी पढ़ लें, वो इतनी इंटीमेट ह्यूमन किसी भी एस्पेक्ट के बारे में, सच एज जेलसी, मतलब एक पूरी उसकी स्टोरी, उसका थीम जेलसी है, पावर है, और पावर के साथ स्ट्रगल, लव है, इसी तरह हेट्रेड है, विच कैन लीड टू सर्टन कॉन्सिक्वेंसेज इफ यू डोंट नो हाउ टू डील विद जेलसी। तो मतलब कनेक्टिंग इट टू योर क्वेश्चन, आप प्रोफेशनली किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, बट आपने अगर इफ यू नॉट कनेक्टेड विद योर ओन इनर बीइंग और आप जेलस हो रहे हैं किसी और की अच्छी चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो, और आप देखते हैं पाकिस्तान में कोई इदारे नहीं बन पाते ना, वो क्या वजह है? पावर स्ट्रगल्स या पावर के साथ नहीं डील करना आता हमें। इसी तरह कोई बंदा अच्छा है, वो कोई अच्छा काम कर रहा है, हमसे डील नहीं होता। तो क्योंकि ना हमने उस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं, ना हमारे बड़ों ने उस तरह से एंगेज किया हमें इस तरह के टेक्स्ट के अराउंड, या और उस तरह के बड़े बंदे तो अब रहे नहीं ना हमारे इर्द गिर्द, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वरना तो ये किताबों शिताबों की शायद इतनी ज़रूरत ना हो। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि यानी ये इतनी डीपली रूटेड है कि आप सिर्फ बेस्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रोड्यूस करके एक सॉफ्टवेयर हाउस में प्लेस कर दें, लेकिन अगर उसकी बाकी ह्यूमन, डीपली ह्यूमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शैलो रह गए हैं, वो लॉप साइडेड रह गए हैं, तो वो इतना एक भयानक माहौल होगा, वो वर्किंग एनवायरनमेंट इतना रिस्ट्रिक्टेड होगा, वो जिस तरह पाकिस्तानी लोग बाहर जाते हैं, कॉमन बात है अब, तो इनेबलिंग एनवायरनमेंट एक टर्म है, यही पाकिस्तानी जबरदस्त काम कर देते हैं बाहर, क्योंकि एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट है ना। पाकिस्तान में वो इतना घुटन का माहौल हो जाता है, हर किसी जगह आप जाए ना, इदारे नहीं क्योंकि बन पाते। तो मेरे ख्याल में एज एन एजुकेशनिस्ट, क्योंकि हमने इतने लॉप साइडेड किस्म के करिकुलम बनाए हुए हैं, वो बिल्कुल अपनी डिग्री से रिलेटेड कोर्सेज हैं, और वो भी थके हुए पढ़ाते हैं, लेकिन वो बंदे इवेंचुअली सोसाइटी में जा रहे हैं कहीं, वहां जाके वो कहीं फिट नहीं हो रहे और एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रही है और डर्टी मतलब गेमें चल रही हैं। मेरे ख्याल में इतनी इंपॉर्टेंट चीज है माशरे के लिए, इंसान के लिए नहीं।
राइट, सो मूविंग ऑन, वी टेक अ कपल ऑफ कमेंट्स। डॉक्टर शनिंद, इफ यू वांट टू कमेंट ऑन द कमेंट्स स्लैश क्वेश्चंस, आई वांट फॉर यू टू टॉक टू अस व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस, ऑल ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। आप टेक्निकल कोर्सेज को क्यों कम करते हैं? व्हाई डोंट यू जस्ट कम्युनिकेट दीज आइडियाज इन सेमिनार्स? एंड यू नो, यूनिवर्सिटी आगे ही काफी डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है।
नहीं, ट्रू, दैट्स वन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। यूनिवर्सिटी के नाम में, अगेन नाम की बात हो रही है, एक यूनिवर्स एम्बेडेड, थैंक गॉड यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्स एम्बेडेड है, तो ऑफ कोर्स वो ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज शुड बी गोइंग ऑन इन अ यूनिवर्सिटी, जो कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में कम होते हैं। तो सेमिनार्स इज वन वे, लेकिन वो आपको पता है, एक चीज़ आप आधे घंटे के लिए सुने तो वो कितनी डीपली पेनिट्रेट करेगी ना, लेकिन एक फॉर इंस्टेंस हमने फिलोसफी के कोर्स में प्लेटो का गॉर्गियस है, पूरा टेक्स्ट के साथ एंगेज किया, तो उसमें पावर वर्सेस जस्टिस और वर्च्यू की अराउंड सारी एंगेजमेंट है। तो व्हेन यू गो थ्रू द होल टेक्स्ट लाइन बाय लाइन, दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशंस जन्म लेती हैं जो इन इन 15 मिनट या इवन इन 3 आवर्स का आप दे दें, डे लॉन्ग वर्कशॉप देते हैं, बट यू कैन गो थ्रू अ टेक्स्ट इन डिटेल इन अ वर्कशॉप। एंड सेकेंडली एंड वेरी थैंकफुली आई विल ओनली रीइटरेट कि HEC अब इस रियलाइजेशन पे पहुंच गया है कि आप, उन्होंने किया ही है कि भाई आप अपना कोर प्रोग्राम कम करें, क्योंकि अंडर ग्रेड इज दैट स्पेस एंड टाइम जिसमें ब्रेड्थ होनी है। तो जनरल एजुकेशन अब हर प्रोग्राम हर यूनिवर्सिटी ने देना ही देना है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 40 क्रेडिट्स आउट ऑफ 120, ठीक ठाक स्पेस है, सो 1/3।
Junaid bhai, I think we lost you. Okay, you should be back any minute now. Oh, you're back.
Ah, sorry. So, lekin I think maine apna point complete kar liya tha, right? Sorry, Azam.
CS walon ka internet acha nahi hai.
ये सीएस वाले फलसफे में जो पढ़ रहे हैं उन्होंने टेक्निकल कोर्स काम पढ़े हैं
टाइम जाया कर रहे हैं हम
ठीक हो गया चले एज एनी अदर क्वेश्चन यू वुड वांट जुनैद भाई कमेंट्स ऑन
जुनैद भाई ने पहले ही कहा था कि आई हैव टू गो एट 10 सो आई थिंक वी शुड नॉट
चले वी विल नॉट होल्ड यू एनी लॉन्गर देन दिस
आप लोगों का अगर ये फेसबुक पे जाता है मुझे नहीं पता
Facebook pe hi ja rahe hain aaj bhi to ja rahe hain bhai jo offline log to oh wow peace to main if there are any comments main unko udhar bhi address kar sakta hu in offline mode yani jab bhi baad mein bhi sure sure is there anyone wow that would be wonderful thank you so much Junaid bhai for being with us for everything that you had to share with us it was a very enlightening conversation thank you and we will be troubling you every now and then
पता नहीं मेरे पास मजीद तो कुछ भी नहीं आपको बताने के लिए
लेकिन
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी बड़ा मजा आया तो काश आप जैसे लोग ज्यादा हो जिनके साथ मजे मजे की बातचीत हो सके एंड जितनी मर्जी देर तक हो सके थैंक यू
संडे को आ रहे हैं आप भी thank you so much Anand bhai thank you so much all right Azam any closing words
no because yes because I don't think ke hum isko bahut jaldi bahut chote unme summarize kar sakte hain but what we are trained in our schools in our colleges in our curriculums we are not only training doctors or engineers or artists or anything else we are also training some personalities with them they are the tools they are going to learn are not only for diagnose others but they are also inculcating some habits jo ke hamari puri zindagi ko affect karegi
bilkul aisa hi And so all the more reason we need to start taking the curriculum and education system that we are pulling people through or pushing them through more and more seriously. Other people, thank you so much. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.